से मिलेगा, जितना भी है सब उसका सबका कोटा निश्चित है कितना हमें मिलना है, तो उसके लिए फिर हमें प्रयत्न करने की जरूरत है, कर्म करने की जरूरत है कि नहीं?
इसका अंदर
विचार एक ही है। एक आदमी ने एक आदमी को खून किया, उसकी क्या सजा होनी चाहिए? आपके घर में डकैत आया और सबको मार रहा था, एक आदमी को मार भी दिया, और आपने जब भी उसको मार दिया तो इसके बदले में आपको फांसी होगी?
नहीं,
क्या होगा? इसलिए सब चीजों का एक बधा हुआ कोई राय नहीं है, विचार नहीं है। उस विचार के गुरुत्व के ऊपर में, हत्या के गुरुत्व के ऊपर में, इसलिए हत्या की। कोई अपने देश से किया या किसी कारण से किया, और उसका कारण अपने लिए स्वार्थ था या जगत के हित के लिए था या उसके अच्छा के लिए था या इच्छा नहीं, अपने आप वो बंदूक लग गई, क्या उसमें था? इस पर विचार करते तो और उसके अनुसार में कमी बेसी दंड अथवा पुरस्कार युक्त सब मिलेगा। इसी प्रकार से कुछ पुरुष जन्मों के अनुसार में हमारा ये शरीर है, ये तो ठीक है, इसलिए इसको प्रारब्ध कर्म और प्रारब्ध शरीर का जीवन के आरंभ से जन्म से लेकर के मृत्यु तक आप यदि कुछ भी नहीं करेंगे तो उसके अनुसार जो फल मिलने वाला है जरूर मिलेगा ही, उसको कोई नहीं रोक, जरूर मिलेगा। किंतु भी इसमें है, किंतु भी है, किंतु भी क्या किंतु है? हम लोग केवल जड़ वस्तु नहीं, पशु पक्षी पतंग देवता तक अपने प्रारब्ध कर्मों को भोग करने के लिए बात है, किंतु मनुष्य के लिए ऐसा नहीं। एक बैल है, बैल आपको सिंह से उठाया और गिरा दिया, मर गया, उस बैल को दंड मिलेगा कि नहीं? फांसी उसको मिलेगी? कोर्ट में विचार होगा, क्यों?
उसको ज्ञान नहीं है,
ज्ञान तो उसको पक्का ज्ञान है, आप जब तक कुछ नहीं करेंगे तब तक वो मारेगा नहीं। हमने देखा है बच्चा एक सोया है और गाय आई, बच्चे को पैर पैर नहीं दे करके सिटी सिटी में खुद का चुप कर दी, वो भी अपने बच्चे से प्यार करती है, बुद्धि नहीं रहती, विवेक नहीं होता तो प्यार करती है। आप उसको सिटू करते यहाँ पर जरा लगा दीजिए, हाँ करके आपसे प्यार
करेंगे,
एक कुत्ते को ऐसा ऐसा कीजिए देखिए कुछ दे करके ऐसा ही जाता हुआ,
उसमें विवेक नहीं।
हाथियों में कुत्तों में भविष्य का भी ज्ञान होता है, किंतु उनमें यह है भोग जोनी है, कर्म जोनी है, वो अपने कर्मों का फल भोगेंगे, किंतु उसको अपना कर्मों का फल उसको क्षय कर दे, उसके लिए वो नया कर्म नहीं बनेगा मारना। और हम अपने कर्मों को जो भोग रहे हैं, हमको किसी ने मारा एक थप्पड़, यहाँ तक तो प्रारब्ध कर्म है, अब जो मारा उसने उससे मैं शांतिपूर्वक रहा है, ताकि ये पूर्व कर्मों का फल है, इसलिए हमको कोई इसके बदले में रिवेंज नहीं मिलेगा। यदि ऐसा नहीं किया और उसने उसको भी दो थप्पड़ मारा, उसके लिए नया कर्म बन गया और उसको भोगना पड़ेगा, समझ रहे हैं? दूसरी बात, उसने आपको अपमान किया, आपने उसे गले से लगाया और उसको काट दिया या कुछ कर दिया, आपने तो आपको तो उसने अपमान किया है इसलिए कि आपका कर्मों का क्षय करा रहा है, पूर्व जन्म का कर्मों का ये सब, क्योंकि आपने ये जो मारा ये आपके कर्मों का फल नहीं है, समझ रहे हैं? क्योंकि ये पशुओं में देवताओं में पशु के मनुष्य के अतिरिक्त और किसी जगह ऐसा नियम नहीं है, ये मनुष्य जीवन के लिए भी उसमें विवेक की कमी है, शास्त्रों का ज्ञान है,
साधु संतों का उपदेश है, माता पिता का उपदेश बचपन से ही है, समझ है तभी आप कर रहे हैं, वो उपदेश नहीं सुन सकते, उनको धारणा शक्ति नहीं है, इसलिए आपके लिए तो वो कर्म बन गया, उनके लिए कर्म नहीं बना, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपको कोई बीमारी थी, बीमारी किस लिए हुई? उस जन्म के कर्म से या इस जन्म के कर्म? इस जन्म के कर्म से असावधानी रहे, ठंड पड़ रही है और आपने बर्फ लेकर के पी लिया,
गला खराब हो गया,
गला खराब हो गया, इसके लिए पूर्व कर्म कर की कोई बात नहीं, इसी जन्म का ही वो कर्म का कर्म, आपने किसी को अपमानित कर दिया और उसने आपको अपमान कर दिया, इस जन्म का ही कर्म का कर्म,
क्योंकि इसके साथ साथ में लाखों जन्मों के कर्म इकट्ठे होकर के योग करने पड़ते हैं। तो उनमें ये विवेक नहीं है कि इसको हम खाई कैसे करें, हम तो यहाँ कर लेते हैं, हमारा जो पूर्व जन्म का कर्म है अपने एनर्जी से उसको खाई कर सकते हैं। कैसे? हमने लाख रुपये कमाए, हम एक केस में गए और हम पर केस मर्डर का है, हमने क्या किया, 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया दे दिया, हो ये क्या दिया, अपने एनर्जी से दिया और उससे हम बच करके निकल आए। हो सकता है कि प्रभु के आंखों में आप नहीं बचे, इन्होंने तो बचाई दिया ना लोगों की दृष्टि में, ये एनर्जी है, आप बीमार पड़े औषधि खा ली, पशु तो नहीं खा सकते, पशु को आप खिलाएंगे तो खाएंगे। तो इस तरह से हम कर्मों को कुछ दान पुण्य अच्छा ये सब काम में व्यवहार में लगा करके कुछ अपने को कम कर लेते हैं। और एक होता है यदि भगवान की भक्ति की ये अमोघ बाण है, अच्छे बुरे जितने कर्म है सबको नष्ट करके और भगवान की भक्ति, उसको कुछ भी भोग नहीं करता। अजामिल ने लाखों आदमियों को मारा, वाल्मीकि जी ने लाखों आदमियों को मारा, उनको फल भोगना पड़ा कुछ? उल्टा नाम जगत जगत जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म के समान निर्विकार होकर के हो गए। अजामिल ने कितना पाप किया, फल नहीं भोगना पड़ा, क्यों? भगवान का नाम करने से वो भी हृदय से प्रेम के साथ में किया, उनका सब कुछ पाप ताप जितना था सब यदि अपने प्रारब्ध कर्म को नष्ट करना चाहते हैं, दुखों को दूर करना भी चाहते हैं, तो भगवान का नाम बड़े कर्मों के सस्ता करने वाले तो वही है ना, बड़े दयालु भी हैं। यदि कोई शरणागत होता है तो सब भगवान को पता भी नहीं होता, वो निर्मल भी हो जाता है, सब कुछ जाता है अपने आप, ऐसी सब व्यवस्थाएं उन्होंने। बड़े बड़े ज्ञानी हैं, तद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठयात् बिना समायात बिना अनुभव गई अपैत नाम स्पूर्णे सत्य प्रारब्ध कर्मो। शंकराचार्य जैसे लोग हैं एकदम ज्ञान के टॉप पर है, जगत झूठा है, हम ब्रह्मा सर्वम खलुदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है, किंतु उनको भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, कौन ये प्रारब्ध के तरीके। किंतु जो लोग नाम का सहारा लेते हैं अपैत नाम स्पृण तत्व, एक नाम यदि उसकी होगा तो क्या होगा, जितना प्रारब्ध का सब यदि प्रारब्ध कर्म नष्ट हो गया तो जीत नहीं रह सकते, क्योंकि शरीर कैसे चलेगा। उसके लिए प्रभु अनुग्रह करके अपने विधान से तब खुद प्रारब्ध नहीं है उसके जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ व्यवसाय कर देते हैं, उसमें भक्तों का दुख और सुख ये अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार में, जैसे कुंती देवी ये द्रौपदी पांडवों का दुख, सीता जी का ये कर्म के लिए नहीं है, सीता जी को कौन सा कर्म किया था जो उनको वन में जाना पड़ा, ये प्रारब्ध नहीं, ये प्रभु की लीला होनी चाहिए। ऐसे भक्तों में देखेंगे भक्त लोगों को ऐसे मालूम होता है कि बड़े गरीब हैं, वो सोचते हैं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, न किसी का लेना न किसी का देना, शांति के साथ। इसलिए इस सबके बहुत से विचार हैं, प्रारब्ध कर्म भोग करना भी पड़ सकता है, किंतु नाम में वो शक्ति है जो इस सबको, नाम ही में नहीं भक्ति में भी भगवान की कथा जो सुन रहे हैं इसमें भी हो सकती है। भगवान का स्मरण करने से, भगवान का मूर्ति दर्शन करने से वृंदावन धाम इत्यादि जाने
राजस्व क्षय हो जाती
है। उसके पति और घर वाले
शंकर से
और जब ताली बजा दिया हाथ उठा करके हरी बोल करके वृंदावन में चली आई, तो उसके पति उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं पैरों में गिर रहे, खाने की कमी हुई, किसी की कमी हुई, प्रतिष्ठा की कमी हुई, आखिर सारा जगत ही अपनी श्रद्धा लेकर के पुष्प लेकर के उनके चरणों में। अभी तक कौन ऐसा है जो मीराबाई को श्रद्धा नहीं करता, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं, हम अपना कर्तव्य करेंगे, भजन करेंगे और जैसी स्थिति आएगी ताली बजा करके हरि बोल हरि बोल
गौतम आनंदे हरि बोल गौतम आनंदे।
मेरी जीत हो तो मेरी जीत,
मुझे कैसे जीत हो, दोनों का बल बराबर। कितने उन लोगों ने सुना कहीं से, जो आत्मा को जान लेगा वो अजर अमर हो जाएगा, अपने को जान लेगा कि मैं कौन हूँ, इसका नाम है आत्मा। तो जो अपने को जान लेगा कि मैं कौन हूँ वो अजर अमर हो जाएगा, उसको कोई नहीं जीत सकता, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, वो विश्व को विजय कर लेगा। और वह परम सुखी हो जाएगा, उसको अवश्य प्रमाद निद्रा इत्यादि कभी भी अज्ञानता नहीं आएगी और वो विश्व को कंट्रोल कर लेगा। इन्होंने सोचा विरोचन ने, यदि आत्मा को जान सको तो मैं देवताओं को जल्दी से परास्त कर दूंगा, इसलिए आत्मा को जाननी चाहिए। वो कैसा है, सब समय एक रस रहता है, एक रस मैंने क्या जैसा रहता है वैसा नहीं, उसमें अदल बदल परिवर्तन ये सब नहीं है, उसमें कोई विकास नहीं, सब समय एक समान ही रहता है, कभी रूपांतर नहीं होती, उसकी जन्म और मृत्यु भी नहीं होती। ठीक है, उसको जानना चाहता हूँ, किसे जाने, ब्रह्मा की जो जो जगत की सृष्टि करने वाले हैं, तो प्रजापति ब्रह्मा के पास नहीं करने को, बस इंद्र ने सुना, नारद जी ने बतलाया। ठीक है, इंद्र ने सुना नारद जी से, आत्मा अजर अमर है, जो आत्म तत्व को जान लेगा कभी उसका कहीं भी पराजय नहीं होगा, तो सब विश्व को जीत लेगा, उसको कभी बुढ़ापा नहीं आएगी, उसका जन्म नहीं होगा, मरण नहीं होगा, और वो सब समय एक समान रहेगा, आनंद में रहेगा। ये पूछा जी, इसको जानना चाहिए तो भी चले ब्रह्मा के, ब्रह्मा के पास में दोनों ठीक एक ही समय होते हैं, न उन्होंने उससे बातचीत किया था, न दोनों ये चाहते थे कि हम उसको जीते, हम उसको जीते, किंतु ब्रह्मा के पास में एक समय होता है। भाई कैसे आए, इसलिए उन्होंने कहा, दोनों ने कहा अलग अलग, हम आत्म तत्व को जानने के लिए आते हैं, ये आत्मा क्या है, मैं क्या हूँ, आप हमको बताएं, हम लोग नहीं जानते हैं, ये सस्ती चीज नहीं है, बहुत महंगी चीज है, इसको साधारण आदमी नहीं समझेगा, इसलिए जाओ 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहता है हमारे आश्रम में, सेवा करो, गैया है इनको देखो सुनो, और जो सेवा करना है वो सब झाड़ू से लेकर के सब काम करना है।
ब्रह्मा जी का भी आश्रम है,
25 वर्ष के बाद में मुझसे भेंट करना। तो ये लोग सबके चले गए और वहां पर सेवा करने लगे उनके लिए। 25 वर्ष के बाद ब्रह्मचर्य के बक रहे हैं, सब समय भगवत चिंतन या जैसा उनका नियम है ब्रह्मचर्य का, ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके सेवा करके आया तो हम आए। देखो 25 वर्ष तक तुम लोगों ने दाढ़ी और ये केस नख तक नहीं कटवाया तुमने, ब्रह्मचारी लोग का ऐसा ही रंग जाओ, अब एक तरफ दाढ़ी काट रहे, केस कट रहे और अच्छे अच्छे अलंकारों में विभूषित होकर के हमारे सामने अच्छे कपड़े पहनो, अलंकार पहनो, सब सज धज करके आओ। ऐसा ही किया, नहीं किया, बहुत धीरे के बाद में अलंकृत होकर के काफी अच्छे से। तो ये दर्पण लो दिख रहा है, दर्शन लगा दिया था कि देखो ये देख रहे हो यही आत्मा है, ये तुम अभी जो सज सज करके आए हो यही आत्मा है। इसको जान लेने से ही अजर आदमी हो जाएगा, कोई रोग नहीं आएगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा, ध्वंस नहीं होगा, और सब कुछ करा देता है। उनकी बात मान करते विरोचन तो चला गया, कहा जाइए मनुष्य शरीर ही आत्मा है, इसकी सेवा करने से ही, इसकी वृद्धि करने से, इसको खिलाने पिलाने और ये सब करने से आदमी वज्र जैसा हो जाएगा और उसको कोई पराजित नहीं कर सकता, अजर अमर हो जाएगा। तो आप उसके सब जगह यही सिखा दिए और वो संतुष्ट हो
गया।
किंतु इंद्र जी रास्ते में जा रहे हैं और सुख भाई आत्मा तो एक समान रहता है, उसका जन्म मृत्यु नहीं है। तो ये जो शरीर को हमको दिखलाया है सुंदर स्वास्थ्य, तो ये तो इसको तो ये मरना होगा, अब जन्म है इसका, मेरा तो जन्म हुआ मरना पड़ेगा। और ये जो दाढ़ी जो हमने कमाई और ये साफ चेहरा निकल आया तो फिर दो दिन के बाद दाढ़ी आ जाएगी और कैसा आ जाएगा, और ये कपड़े मैले हो जाएंगे, अलंकार भी पुराने पड़ जाएंगे, तो चेहरा भी वैसा हो जाएगा, बूढ़ा होने पर चेहरा नहीं भूख भी पड़ जाएगी और सौंदर्य समाप्त हो जाएगा, चाहिए तो परिवर्तन। और इसको रोज ही रहने कितना जन्म और मृत्यु होता है, कितनी तरह की चिंताएं आती हैं, कितना दुख और कष्ट आता है, ये तो इस शरीर को तो मैं जानता हूँ किंतु इसे तो कुछ लाभ नहीं, ये तो अजर अमर है नहीं।
नारायण जी की परिभाषा से कैदी नहीं करते
भाई, रेशन तय नहीं, तुम क्यों लौटाए, हमारे बात तो विश्वास नहीं है। विश्वास तो है किंतु शायद मैं समझ नहीं कर रही हूँ, विश्वास हम आप जो कर रहे हैं वो ठीक है किंतु मैं समझ नहीं, आप इसको बतला दीजिए। मैंने ये विचार किया जैसे ये तो शरीर रोज ही रूपांतरित होता है, इसकी आयु कम होती जाती है, इसमें रोग है, शोक है, तरह तरह के दुख है, कष्ट है, परिवर्तन है, ध्वंस है, या जर्म तो है नहीं, इसमें तो शांति और आनंद है, अभी आती है झलकती और चली जाती। ठीक ठीक विचार, तुम हमारे बातों पर विचार किया, ठीक है 25 वर्ष और रहो, चित्त को स्थिर करो, हमारी बात समझने लायक तुम हो और वैसे ही चला 25 वर्ष और रहे, 25 वर्ष आगे देखो, ये मन में जो चिंता आती है, स्वप्न होता है, जो स्वप्न देखता है किंतु मरता नहीं है, स्वप्न में जो आदमी चिंतन करता है कहां कहां की सैर करता है और क्षण मात्र में कहां से कहां चला जाता है, वही जो स्वप्न में जो पुरुष दिखता है, जो मन है वो आत्मा है। इसको जान लेने से मन की गति, मन की ये सब करने से वो सब को परास्त कर देगा और अजर अमर हो जाएगा। जा उस समय तो पूरा समझ में नहीं आया किंतु रास्ते में फिर विचार कर ये मन को तो दिन में 13 दशा होती है और शरीर मर जाने के बाद में मन भी चला जाता है
एक रस्ता
और सब समय परिवर्तन और जन्म के साथ में उसका जन्म और मरने के समान चला जाता है, तो इसलिए ये तो होना तो मन को तो स्वप्न होता है या ये सब होता है, तो मैं देखता हूँ किसी तरह के स्वप्न में किसी ने सिर काट लिया और मैं देख करके रो रहा हूँ, यदि सिर ही कट गया तो रोने वाला कौन, कभी कुछ तरह तरह के स्वप्न देख, तो ये स्वप्न वाला पुरुष और जो मन है ये तो कभी अजर अमर नहीं। अरे लौट आया, मैं आपकी बात फिर भी नहीं समझा, विचार किया रास्ते में, जो शरीर जैसे ध्वंसशील है परिवर्तनशील है, मन में भी तो तरह तरह की कल्पनाएं आती हैं जाती हैं, सुख दुख मन ही तो होता है, शरीर को तो होता नहीं है, इसलिए मन ही में तो परिवर्तन और ध्वंसशील और ये सब होता है, सुख दुख होता है। आत्मा तो नित्य आनंदमय है, एक रस है, कभी इसमें दुख दुख सब नहीं है, तो ये कैसे ये इसमें तो ऐसा देखते हैं, कभी नींद कटता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ कोई गाली दिया तो वो मन नहीं लगता है, इसलिए मन तो आत्मा जगत के जितने बुद्धिमान लोग हैं वो मन को ही मानते हैं और मूर्ख लोग मानते हैं सब इंद्रियों में। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, वो जितने ऐसा कहते हैं वो सभी मूर्ख हैं, वो जो बुद्धिमान जगत के हैं वो ही मन पर ही जगत को टिकाए रखते हैं वो सब पच्चीस वर्ष जाओ और ब्रह्मचर्य के 25 वर्ष रह करके अच्छी तरह से मन को शांत करके फिर 25 वर्ष के बाद जब सो जाते हैं तो गंभीर नींद आ जाती है। उस समय में जो सो जाता है जो पुरुष, यह है वह है नहीं है और सुख और दुख कुछ भी नहीं होता, एक रस रहता है। सुषुप्ति वाले पुरुष को कोई यदि जान ले तो वही आत्मा है, वो अजर अमर नित्य अब इनके समझ में आया यहाँ ये हो सकता है कुछ है नहीं, ये किसकी स्थिति है और कोई बात नहीं। मैंने कोई ज्ञान नहीं, मैं हूँ या नहीं कुछ भी, और वो जन्म जब जब कुछ है नहीं तो मरेगा क्या जन्मेगा। हाँ ये कुछ दृष्टि में आ रहा है, ये वही ब्रह्म है वही आत्मा है। यदि उपदेश दिया तो लौट करके चले तो रास्ते में विचार किया और जी आत्मा तो आनंद में कहा किंतु सुसुप्ति में आनंद तो है। अच्छा आनंद जब रहता है तब भोग करने वाला आनंद का होता है, आनंद को जो भोग करने वाला है वो आत्मा है ना, वो अजर अमर। तो इसमें तो देखते हैं कि कोई है ही नहीं, कोई सुख को भोग करने वाला है, आनंद का उपभोग करने वाला कोई है नहीं, उसमें मैं भी नहीं रहता। तो वो क्या जगत को जीतेगा और क्या जब कोई है ही नहीं है तो किसको जीतना क्या जीतना, ये तो बात नहीं करता, ये तो कभी होगी जिसमें अपनी सत्ता तक नहीं हो जाएगी। ये चलो इस बात देखते ही बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। तुम लौट आए थे जो तो आपने जो कहा ये बात पर हमने विचार किया, जैसे सुषुप्ति अवस्था में जो रहता है उसको ये ज्ञान नहीं रहता कि मैं हूँ कि नहीं, इसके अतिरिक्त और कोई चीज है या नहीं है, आनंद नाम की कोई चीज है या नहीं है, उसको भोग करने की तो बात बहुत ही जरूरी। अजर अमर कौन है जब कोई है ही नहीं है तो अजर अमर कौन है, तो विजेता और पराजित वाला कौन रहेगा, तो ये तो बात बड़ी समझी और कोई गहरी बात नहीं। अब तुम पच्चीस वर्ष के बाद उनको किया है, देखो आत्मा वह है जो इस शरीर में है, आंखें देखती है कि आंखें नहीं देखती, वो देखता है, वो जिसके माध्यम से देखता है आंखें माध्यम है देखने का, सांस ये शरीर ले रहा है शरीर नहीं ले रहा है, उसके रहते ही ये जो लेता है उस वही लेता है, विचार नहीं मन नहीं करता, वो जब तक है तब तक ये दिमाग में विचार आते हैं। वो आत्मा भगवान का अंश है नित्य सत्व, इस शरीर में जैसे दूध में घी है ऐसे एक जगह है, वो एक जगह किंतु सब जगह है, वो भगवान का नित्य है अजर है अमर है। उस आत्मा को जान लेगा तब शरीर का ज्ञान उसे पृथक हो जाएगा, नश्वर भाव को छोड़ करके वो आत्म तत्व होकर के सच्चिदानंदमय अंश बन जाएगा, वो भगवान का सेवक है। अपने से तुम नहीं जान सकेगा, उपदेश से भी नहीं जान सकता। अब तुम हरि नाम करो और चिंतन करो जो मेरे भगवान का रहा, प्रार्थना मुझसे करो, तुम हमको अब गुरु के रूप में ले लो, और सब उस व्रत आत्मतत्व की चिंता करो। आत्मतत्व की चिंता करने से भी नहीं होगा, ये मैं कौन हूं, रात के अंधकार में मैं गोरा हूं काला हूं ये दिखता है, कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम सूर्य को देखने की चेष्टा करो, सूर्य का दर्शन होने पर अपने को भी दिखाई पड़ेगा, दूसरों को भी दिखाई पड़ेगा, जो कुछ है सब कुछ दिखाई। इस तरह से भगवान की भक्ति करने से भगवान का दर्शन होने पर अपने आप मेरा भी मालूम हो जाएगा कौन हूँ, प्रभु का भी मालूम हो जाएगा, जगत के जीवों को भी मालूम हो जाएगा, संसार क्या है ये सब कुछ मालूम हो जाएगा, और वही व्यक्ति अजर अमर हो, क्योंकि वो आनंदमय भगवान है। तुम भगवान का नाम, भगवान का चिंतन करो, भगवान की आराधना करो, भगवान की कथाओं को सुनो। इस तरह से करते 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 ये सब चीजें दूर हो जाएंगी और सभी भगवान का दर्शन कर सकोगे। इस समय बस इस समय तुम चिंतन करते चले गए और चिंतन करते हुए
इस समय जो बच्चे सभी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो वो मन जिसे मन जो शरीर को अपना मन है, देहात में बुद्धि होने के कारण वो दुख किसको, मन के कारण हमको हो रहा है,
अनुभूति के
अनुभूति में
वो मन में ही वो कष्ट है। यदि मान के क्लोरो फॉर्म दे दिया जाए या कोई इंजेक्शन दे दिया जाए तो शरीर में दर्द रहते हुए नहीं मालूम, शरीर में दर्द है इंजेक्शन दे दिया सेंसलेस हो गई तो क्या दुख होगा। ऐसे ही कोई स्थिति में पहुंच गया जैसे कि लार मारा गया, उनको होगा क्यों नहीं होगा,
शरीर आत्मतत्व में स्थित है,
आत्मतत्व में स्थित है, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, उनका पूर्व कर्म जो था वो सब जल गया, प्रारब्ध कर्म जल गया है, इसलिए वो शरीर ही नहीं है, उनको कोई कष्ट नहीं होगा।
मतलब भजन करते करते ऐसी
आत्मतत्व को जान लिया है ना, इसलिए अब मरेंगे, उनको रोग नहीं होगा, पूर्व जन्म का कोई कर्म का उस पर अभाव नहीं किए पड़ेगा, इसलिए शोक भी नहीं होगा, दुख भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, परिवर्तन भी नहीं होगा, वो एक रस में स्थित हो
जाएगा। हमें इसलिए दर्द होता है क्योंकि अभी हम देहात में बुद्धि में,
अभी देहात में बुद्धि में है, पूर्व जन्म के कर्म से ये शरीर मिला है, इसलिए उसमें उस कारण से इसमें रोग होते हैं, रोग होता है इस शरीर में और उसमें आत्मा उसमें देहात में लगा हुआ है, इसलिए
आत्मा को महसूस होता है,
नहीं मन को होता है, किंतु मन को होता है इसलिए कि आत्मा उसमें है, इसलिए आत्मा आरोप करता है ये मुझको ही हो रहा है,
आत्मा क्योंकि सजा तो इस जगत में आने की सजा तो आत्मा को ही मिली हुई है ना, क्योंकि उसमें भगवान से उसको
यही महसूस नहीं होता, महसूस होता है इसलिए कि तदात्म बुद्धि होती है, ये मैं ही वो हूँ। चलिए जितना ये बन जाएगा
मन से सम्मिलित आत्मा को महसूस होता है, निजी आत्मा मतलब सिर्फ आत्मा को ये महसूस नहीं होता, मन से सम्मिलित आत्मा को।
जैसे मैंने मनु को एक आदमी कान पकड़ करके और उसको मारा,
किसी आदमी ने
गुंडे पार्टी में किसी ने, तुमने देखा कि तुम्हारे भाई को मारा तो तुमको क्यों कष्ट हुआ,
तुमको
थप्पड़ लगा, तुमको अपमान किया उसने, तुमको क्यों लगा, क्यों लगा,
अपना मेरा 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 भाई है,
इसको मारने से तो दोनों एक निकलेंगे,
एक्शन तो अपना मानना है, इसमें शरीर का अपना अपना मान रहे
हैं। देखो तुम्हारे ऊपर में कोई चोट नहीं आई, तुमको कोई अपमान भी नहीं किया, और दूर खड़ा तुम्हारा भाई है उसको अपमान कर रहा है, तुमने जो ये मेरा जो लगा रखा है इसलिए उसको जितनी चोट पड़ रही है उससे अधिक तुमको चोट पड़ रही है ममता के वजह से। इसी तरह से वो आत्मा ने मन और शरीर को ये मान रखा है,
आज हुआ
है जो कर्म है
ये दूर होने,
हाँ दूर हो जाए, एक्शन तू फिर जितना जो कुछ है,
तो भजन करते करते भी ऐसी स्टेज आएगी कि शरीर में रहते हुए भी शरीर के दुख दुख नहीं रहेगा,
ऐसा हो जाएगा, ऐसा कोई आकर के हमको गाली दे। शरीर से गाली हवा में उसकी उड़ रही है, तुम्हारी माँ की हम हमारी माँ तो मर गई अब वो किसको लगेगा अजय साला अजय तो साला तो बहुत ये चीज है
कहने में
क्या होगा उसका मुख थक जाएगा उसमें और बिगड़ेगा वो इशारा तो और जलेगा
ये तो जवाब नहीं दे रहा तो वो तो वही कह के
ऐसा है ना कुछ लोग ऐसे होते हैं शरीर में कष्ट तो हो रहा है काली सुन करके किंतु ऊपर से मौन बने ऐसा नहीं एकदम वो समझ रहा है जैसे भाई मेरा शरीर नहीं है उससे
साधन भी सहन करो वो करो मैं सोच के भी कोशिश कर रहे हो तो
भी ठीक है किंतु उस समय ऐसी स्थिति आ जाएगी कि मालूम ही नहीं होगा मालूम ही नहीं होगा तो हमारी सबसे छोटी बेटी आई है इसको भी प्रसाद साथ ठाकुर जी को ये देना
ये भी महाराज भक्ति करते हैं
ठीक है तुम हरिनाम
इनका भी चाहते हैं कि भक्ति लड़का मिले
भजन करो प्रभु अच्छी व्यवस्था कर देंगे जैसे अनहोनी सी जैसे हो गई वैसे तुम्हारे लिए जैसे हो तुम भगवान खरीद
रूपम सत्यवासी राधाकुण्डम गिरीवर महो राधिका मा भवासम प्राप्त ही गुरु पति पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय नमो लोगों ने साधन भजन के लिए शिक्षा के लिए कैसे साधन भजन करना चाहिए इसके लिए हम लोगों ने माधुर्य का कादंबरी आरंभ किया
है
जिन लोगों को विशेषकर सदगुरु से हरिनाम और शिक्षा नहीं सकती है जो लोग शुद्ध रूप में भगवान का भजन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये अमृत की वर्षा के समान जैसे अमृत की वर्षा बरसाने वाली कोई मेघ हो ऐसे ये है इसको सुनने से राधा कृष्ण ने अपने आप साधन भले में रूचित बन कर और साथ ही हरिनाम करने में हरी कथा सुनने में भगवत कथा स्मरण करने में इतना आनंद मिलेगा जिसकी कोई कल्पना नहीं था इसलिए इसका नाम उन्होंने रखा है माधुर्य कृष्ण के रूप नाम गुण लीला की रूपी अमृत माने मधुर अमृत को बरसाने वाली ये मेघ माला है कैसे उस चीज को हम पा सकते हैं इसके लिए हमने ये एक बात तो सर्वथा निश्चित है सर्वथा निश्चित इधर देख करके कान से हाथ पर एक मत रख लिए गौर से सुनिए यह बात ध्रुव निश्चित है भगवान की भक्ति के बिना संसार में सुख और शांति नहीं पहले से ही चीज को सुना बिना भगवत भक्ति के न लौकिक न पालो कोई भी सुख और शांति वो लक्षण के समान है। संसार में जो सुख और शांति जो मिलती है वो मृग तृष्णा की भांति है। मृग मरुभूमि में गर्म जब हवा लू चलती है लूटी लहर चलती है उसको देख करके समझता है कि पानी की लहर है और आगे बढ़ते 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 उसी मरुभूमि में गिर करके छटपट करता हुआ प्राण को छोड़ देता है। इसलिए भगवत भक्ति ही सुख और शक्ति का कारण है। लोक परलोक पर किंतु ये भगवान कौन है ये भी थोड़ा सा निश्चित होना चाहिए और भक्ति किसको कहते हैं ये भी निश्चित होना चाहिए और जो करने वाला है ये भी निश्चित होना चाहिए। तीन चीजें नहीं तो भगवान यदि मान लिया कोई किसी चीज को जैसे ईश्वर है जगन्नाथ है इंद्र है सूर्य है गणेश है शंकर है ब्रह्मा है इनको मान लिया तो एकदम यह बदल जाएगा। यदि राम को नृसिंह को अल्लाह को खुदा को गॉड को भी मान लिया ये ठीक तो है किंतु पूर्ण कंसेप्शन उसका नहीं है भगवत का है ठीक। अल्लाह खुदा भी ब्रह्म भी ये सब भगवान ही हैं किंतु ये फैक्शन है अंश भगवत्ता की चरम सीमा कृष्ण में ही है। सब ठीक होने पर भगवत्ता में जो जो चीजें पाई जाती हैं वो जो और सब में कुछ कुछ है अंशिक किंतु सीमा तक जिसको उपनिषद वेदों में और सर्वत्र पुराणों में भागवत में बतलाया गया गीता में बतलाया गया वो कृष्ण में ही वो सब कुछ लक्षण मिलते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने महर्षियों ने बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक मन धर्म इस सब लोगों ने कृष्ण को ही अंतिम सीमा तक हे ते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान ये मूल भक्ति के संबंध में हमने बताया कॉजलेस कोई संसारी कामना वासना जिसमें नहीं हो कृष्ण के लिए ही कृष्ण की भक्ति हो तो ये सिद्धा भक्ति है। कृष्ण के लिए ही कृष्ण की भक्ति ऐसा नहीं कि कृष्ण की भक्ति करते हैं और धन चाहते हैं तो ये धन हो गया धन के भक्ति इसलिए ऐसा नहीं कृष्ण की भक्ति हो कृष्ण की कृति के लिए ही हो तब ये इसी भक्ति के लिए कह रहे हैं। जब ये कहीं सुनता है कोई व्यक्ति संसार में दुखी तब हो जाता है चैन उसको नहीं देती गरीबी धनी के ऊपर में नहीं ये निर्भर है किसी प्रकार से उसको चैन नहीं अशांति हुई कोई सहारा नहीं देता। उस समय में बाई चांस पूर्व जन्म के संस्कार से इस जन्म के संस्कार से यदि शुद्ध संतों का संग मिला तो कुछ सुनने को उसको मिलता है तो वो बतलाता है देखो यदि तुम इन दुखों को दूर करना चाहते हो विपत्ति को दूर करना चाहते हो तो भगवान का भजन करो सर्वधर्मान परित्यजमान एकम शरण। यदि कोई भी व्यक्ति मनुष्योचित अपने जिसको मानवता मानवता आज कह रहे हैं मानवता के समस्त अंगों को कोई पूर्ण करे और भगवान के साथ में कोई भी भाव न रहे भगवान का भजन न रहे भक्ति न रहे तो उससे किसी बात नहीं बल्कि और संसार में धसता हुआ चला जाएगा दलदल में क्योंकि ये शरीर तो हम मनुष्य समझते हैं और ये शरीर हम हैं नहीं हम तो हैं आत्मा। मानवता कुछ भगवत्ता के निकट में है ये बात तो ठीक है जब इसका सदुपयोग हम करते हैं मानवता का भगवान के भजन में तब ठीक है। तो इसलिए जब वो सुनता है कोई व्यक्ति कि भाई जितने दुख हैं ये सब दूर हो जाएंगे यदि भगवान का भजन और जितने प्रकार के सुख हैं वो भी सुख मिलेंगे भगवान का भजन का
तो एक आदमी को कुछ अवलंबन मिलता है, भाई क्या करूं, भगवान का नाम की भगवान की कथा सुनो। जैसे गजराज ने एक पुष्प लेकर के भगवान को अर्पण कर दिया अपने हृदय के लिए, और प्रभु ने उसे ग्रहण कर उसके सारे कष्ट दूर हो गए और उसको वैकुंठ की गति दे दी। ऐसे ही तुम यदि भगवान का भजन करेगा तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, दुख मिलेगा। ये दो प्रवृत्ति हुई, एक दुख दूर और एक
दुख मिले।
इसको सुन करके उसको कुछ श्रद्धा होती है, जैसे ये व्यक्ति साधारण आदमी नहीं, ये खुद पालन करता है और देखते हैं कि सब समय खुश रहता है, तो ये ठीक है, ये प्रमाणिक व्यक्ति है, करता है उसी को करता है, तो इसमें तो कुछ पैसा लगता नहीं है, ऐसा थोड़ा सा हरिनाम करके देखें कुछ भगवान की कथा और अपना घर का काम करते रहेंगे, इसमें तो कोई हर्ज तो है नहीं, इसलिए वो मान लेता है। इसमें जो दुख दूर करने के लिए जो प्रवृत्ति से भगवान के शरणागत होकर के या नहीं शरणागत होकर के जो भक्ति में प्रवेश करने की श्रद्धा जो हुई, ये वैधि भक्ति है। दुख को दूर करने के लिए कर रहे, भगवान से संबंधित अभी नहीं हुआ, भगवान का भजन कर रहे हैं किंतु अपने दुख को दूर करने के लिए, यहाँ से वैधि भक्ति के प्रति श्रद्धा। भक्ति का पहला लक्षण यह है साधन का, यदि कोई हृदय के बक्से में इसको लो तो और अच्छा रहेगा, यह बक्सा तुम रखो किंतु इसको यहाँ से सुनो तो अधिक काम करेगा। तो दुख दूर करने से भगवान का क्या संबंध, दूर तो कर देंगे, तुमने भगवान के लिए तो चाहा नहीं, इसलिए ये पत्ता का एक भाग रूखड़ा है, ये समझ रहे हैं, रूखड़ा किसको कहते हैं, साफ नहीं है, मशीन कोमल नहीं है। जब किसी पेड़ में पौधा में पत्ते जब निकलते हैं तो कुछ संकुचित ऐसे रहते हैं, तो ऊपर वाला जो है ना वो रूखड़ा होता है,
अंदर मशीन
और अंदर में कोमल होता है ना, तो भक्ति के जो पत्ते जब निकलते हैं, जब निकलने के होते हैं तो दो पत्ता पहले निकलता है, क्लेश अग्नि और शुभदा। इसमें क्लेश अग्नि माने भक्ति जो आती है भगवान का नाम करने से, भजन करने से, हरि कथा सुनने से, भगवान का अर्चन पूजन करने से, भगवान के धाम में जाने से, ये जो भक्तियां हैं इससे क्या होगा, पहले ही दुख दूर करेगा, जरूर करेगा,
क्लेश अग्नि,
क्लेश अग्नि क्लेश को दूर करती। जितने हमारे पूर्व पूर्व प्रारब्ध अपरारब्ध अथवा ये प्रारब्ध जो शरीर बना है, जितने प्रकार के दुख है सुख है ये जरूर उसको दूर करेगी, जब भी हम ठीक से करते हैं कुछ दिन में इसका फल आएगा, क्योंकि ये रुखड़ा भाग है, पहले ऊपर से दिखेगा, अभी स्थिरता नहीं आएगी, जब ये खुल जाएगा तो वो पत्ता उलट करके ऊपर में
कोमल
चिकना वाला आ जाता है, नीचे में रुखल चला जाता है। तो पहले अवस्था में संसारिक लोग यही चाहते हैं, यही भावना होती है, भगवान का भजन हम करेंगे तो हमारे दुख दूर हो जाएगा, किंतु ये रुखड़ा भाग किंतु होता है, क्योंकि भगवान का भी इसका डायरेक्ट संबंध है, आ रहा है समझ में,
क्लेश अग्नि रुखड़ा वाला हिस्सा हो गया।
अभी भगवान के कि भक्ति करके भगवान को सुख देंगे तब तो हमको सुख होगा, भी सुख से संबंध नहीं हुआ,
अभी हमारा रुखड़ा है।
अब इसी विचार हम ये जो विचार करते हैं, लोगों में विचार करने की शक्ति आएगी कि हमारी भक्ति किस स्टैंडर्ड की है, हमको कहाँ तक ले जाना है भक्ति को, वो हम नहीं कहेंगे, ये लक्षण के द्वारा हम उसको निर्णय कर लेंगे हमारी भक्ति किस स्तर पर है, यही तो इस ग्रंथ की खूबी है, जो बतला देगा हम किस स्तर पर चलते हैं, हमको किस स्तर तक ऊपर में पहुंचना है, और यदि ये सब संग नहीं होगा, इष्ट गोष्ठी नहीं होगी, तो जैसे अंधकार में पड़े हुए हैं वैसे सारा जीवन, दस दिन जीवन, लाख जीवन, उसी में हम लोग घूमते हुए रह जाएंगे। बस भक्ति इसका नाम है, इसका नाम है इष्ट गोष्ठी, हरि कथा इसको कहते हैं, कोई भी संसारिकता, कोई भी कर्म की ये सब चीजें, वो तो अपने आप चलता रहेगा,
गुरु का वैष्णव का काम ये है लोगों के हृदय को साफ करके भक्ति का मान ऐसा तैयार कर दे, वो समझ ले बैरोमीटर पर लगा करके हमारी भक्ति किस स्टैंडर्ड पर चल रही है और कहां तक पहुंच रही है। ठीक है, पहले इसलिए भक्ति क्लेश करनी है, इसके बाद में होता है शुभता। अब उस पर हम इसे विचार करें। अभी हम भक्ति की जो प्रवृत्ति हुई, दुखों को दूर करने के लिए जीव पहले भगवान की तरफ में सदस्य होता है, और ये बतलाया गया कि चारों वर्ण और चारों आश्रम के लोग या संसार के कोई भी जीव, कोई भी जीव अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करे तो भी उसको दुख जरूर होगा, ये कर्म है, इसका प्रतिफल जरूरी है।